Today we are reading from Srimad Bhagavatam 8th Canto, Chapter 5, Text Number 28.
Srimad Bhagavatam 8th Skand, Adhyaya 5, Shlok Sankhya 28.
Om Namah Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namah Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Yad aksham ahu tam mitam prabhadiye. Yad aksham ahu tam mitam prabhadiye. See.
Dekhiye.
You're jumping. You're jumping. You're going too fast with some words. This is orchestrated.
कई शब्दों में आप बहुत तेजी से निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल हमने साथ साथ बोलना है.
Calcutta also, how to chant the meter.
मैं ये कलकत्ता में भी बता रहा था कि कैसे एक सही मीटर में माप में इसको तो अलग अलग यहाँ पर जो भक्त हैं अलग अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं.
Told this many times, but at the time the yellow voice wanderer, so I'll tell it again.
तो मैं इसको कई बार बता चुका हूँ परंतु
South India they are perfectionists in the matter of mantra chanting. I mean they are pukka.
दक्षिण भारत में जो भक्त हैं वो बिल्कुल सिद्ध हैं खासकर मंत्रों के उच्चारण में.
When they wake Balaji in the morning, for example,
उदाहरण के लिए जब वे प्रातःकालीन बालाजी को उठाते हैं
थोड़ी ब्राह्मण्स
तो कम से कम 20 ब्राह्मण होते हैं.
Now, ironically, the way they wake Balaji in the morning is very significant.
और विशेष रूप से बालाजी को प्रातःकालीन उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है.
Anybody know?
किसी को पता है?
See, the Sri Vaishnavas there worshipping Lord Narayan, Om Narayan, 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 Vishnu, 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 Aishwarya Bhav, that's their mood.
जो श्री वैष्णव है वो नारायण की पूजा कर रहे हैं ऐश्वर्य भाव में.
And they are interested in going to Vaikunth. They know about Goloka, but they're not interested in going there.
और वो वैकुंठ में जाने में रुचि रखते हैं हालांकि उनको गोलोक के बारे में ज्ञान है फिर भी उनकी रुचि वैकुंठ.
How do they wake up Balaji in the morning?
परंतु बालाजी को प्रातःकालीन में किस प्रकार उठाते हैं?
By singing and chanting Krishna's Braj Leela.
कृष्ण की ब्रज लीला का गान करके.
He's stealing the garments of the gopis. He's dancing on the heads of Kaliya.
गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं कालियों के सर पे नृत्य कर रहे हैं.
These pastimes they chant to wake up Balaji in the morning.
इन लीलाओं का कीर्तन करके वे बालाजी को प्रातःकालीन उठाते हैं.
20-25 ब्राह्मण्स चैंटिंग द श्लोकस इंपेकेबली.
20-25 ब्राह्मण बिल्कुल सटीक तरीके से श्लोक का उच्चारण करते हैं.
वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा यू हैव अ कंडक्टर यू नो.
जैसे पाश्चात्य देश में ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसका एक
कंडक्टर
चालक होता है.
करियर ब्राह्मण्स unlike any of us here, they experience career Brahmins.
Bahut hi anubhav.
So for them, there's not much endeavor involved in chanting perfect metered mantras. That's their livelihood. That's their life and soul.
वो उनका जीवन है तो इसलिए उन्हें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता. उनकी बचपन से ही प्रशिक्षण ऐसा होता है उनके खून में है.
But still, the head priest is keeping the meter. Like a Western orchestra conductor, see, using his hand, see.
फिर भी जो मुख्य पुजारी होता है, वो एक संचालक के रूप में गति को संयमित रखता है.
So I'm just borrowing from that technique, so we can perfect this also. Because remember, this is called the path of perfection, like that little book we have, you know.
तो ये path of perfection, जैसे हमारी पुस्तक भी है.
So everything we have to perfect. Everything.
तो हम कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं उसको बिल्कुल दक्षता के साथ करना चाहिए.
Of course, this, some of these, like these long words are tricky, you know, they're tricky, but we have to try to get it right anyways.
विशेष रूप से यहाँ श्लोक में शब्द हैं संस्कृत में ये थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े रहस्य.
Alright, let's try it again and watch my hand for the meter.
हम दोबारा प्रयास करेंगे और महाराज का हाथ आप देखिएगा किस गति में हमें चलना है.
Twajavirmanam
Ajasya Chakram Twajavirmanam.
You hear the difference?
आपको अंतर पता चला?
How many of you hear the difference?
आप में से कितनों को अंतर?
This is the way it's to be done. When there were, what, 80,000, how many sages at Namasharanya?
88,000.
And when they chanted mantras, no mistakes.
Namasharanya mein 88,000 जब वहाँ पर ऋषिगण थे, जब वो श्लोक का उच्चारण करते थे, एक भी गलती नहीं होती थी।
It's pleasing to Krishna when we chant the mantras properly.
जब हम मंत्र को सही रूप से उच्चारण करते हैं, तो ये भगवान कृष्ण को प्रसन्नता देता है।
What is the result if we please Krishna?
और कृष्ण को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का परिणाम क्या है?
We experience transcendental ecstasy, isn't it?
हम दिव्य भाव का अनुभव करते हैं, दिव्य आनंद का।
It becomes a very blissful experience.
बहुत ही आनंदमय अनुभव होता है।
Krishna enjoys, then we enjoy. Hari Bol!
भगवान कृष्ण जब आनंद का अनुभव करते हैं, तब हम आनंद का अनुभव करते हैं।
Why everybody, instead of being kind of dull, wakes up and gets bright-faced? Why?
अचानक से भक्त लोग,
we chant the mantras nicely, and Krishna is pleased.
जब हमने श्लोक का उच्चारण किया तो सभी भक्त को एक आनंद का अनुभव हुआ ऐसा क्यों क्योंकि जब हमने ठीक रूप से श्लोक का उच्चारण किया तो भगवान कृष्ण को यह आनंद मिला
When Krishna is pleased, then we are pleased automatically. You've heard so many times.
और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हम स्वतः ही आनंद का अनुभव करते हैं आपने कई बार सुना है इसे
To water the root of the tree. This is the whole concept, see?
पेड़ की जड़ में पानी डालना
So let's keep this up because I mean everybody's ecstasy To see level on chanting the mantras properly, everybody's ecstasy level went way up.
जैसे ही हमने श्लोक को ठीक रूप से उच्चारण किया तो सब
yes, that is called Krishna consciousness.
ये कृष्ण भावनामृत है.
That's what will keep you from going away from Krishna. It'll keep you from going away from Krishna.
और यही अनुभव आपको भगवान कृष्ण से दूर जाने से रोकेगा.
When you relish Shabda Brahm.
जब आप शब्द ब्रह्म को रिलिश करें अच्छे से
How many of you know what शब्द ब्रह्म
शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है किसको पता है
किजा दैट्स वेरी गुड ओके शब्द ब्रह्म मींस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन
शब्द ब्रह्म का अर्थ है दिव्य ध्वनि
द सेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज एवरीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस descends from the spiritual world
krishna bhavanamrit mein har cheez agaman hoti hai adhyatmik jagat se
all right so let's go again now with this meditation with this ecstatic meditation let's go again
so is divya dhyan ke sath aaiye hum dobara shlok ka uchcharan karte hain
time is running but still krishna consciousness is eternal kijaye
समय तेजी से आगे बढ़ रहा है फिर भी कृष्ण भावनामृत शाश्वत है
We have to get the Siddhanta. That's the point.
हमें सिद्धांत समझ में आना चाहिए ये पॉइंट है
Okay. अजस्य चक्रम चजयेर यमानाम
अजस्य चक्रम चजयेर यमानाम
मनोमयम पंचदशारम आशु
मनोमयम पंचदशारम आशु
त्रिनावि विद्युष चरम अष्ट
नेमीर
अक्षम अहुस्तम ऋतम प्रपद्ये
अनुवाद
इन द साइकल ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज
भौतिक कार्यों के चक्र में
द मटेरियल बॉडी रिजेंबल्स द व्हील ऑफ ए मेंटल चैरियट
भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है
The ten senses,
10 इंद्रियां
5 for working and 5 for gathering knowledge,
5 कर्म इंद्रियां तथा 5 ज्ञान इंद्रियां
and the 5 life airs within the body,
तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर
form the 15 spokes of the chariot's wheel,
रथ के पहिए के 15 अरे तिलियां बनाते हैं
The three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance,
प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस तथा तमस
are its center of activities,
कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं
and the eight ingredients of nature,
और प्रकृति के 8 अवयव
earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and false ego,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार
comprise the rim of the wheel
इस पहिए की भारी परिधि बनाते हैं.
The external material energy moves this wheel.
बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है.
Like electrical energy.
विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है.
So here the Sanskrit word is vidyut, like electricity.
यहाँ संस्कृत जो शब्द है वो है विद्युत.
This was 5,000 years ago. Don't tell me that it was nothing but primitive knaves running around and copans. Don't tell me that, because here is the Sanskrit word vidyut, means like electricity.
तो ये 5,000 वर्ष पूर्व की बात है. तो कृपया हमें ये मत बताइए कि उस जमाने में कोई बहुत ही पिछड़े हुए साधुगण सिर्फ कोपिन पहन के इधर उधर भागा करते थे. ऐसा नहीं है.
In Krishna book also is described that the fort of the demon, which demon it was fortified with electric fence. Banasura. Boma. His fort was protected with electric fence.
Krishna pustak mein bhi ye leela ka varnan aata hai jab ek asur tha bhaumasur. जो उसका किला था वो बिजली के द्वारा उसकी रक्षा होती थी.
A moat, which means a wide river, like what they used to have in the medieval times in Europe, which they got that from Vedic culture, obviously.
जैसे medieval times में हम देखते हैं कि जो राजा का किला होता था उसकी रक्षा किले के चारों ओर एक पानी का एक किला टाइप होता था.
A wall of poison gases.
और जो भौमासुर का किला है उसके बाद एक ऐसी दीवार थी
जो usually thick, you know, stone walls, of course.
बिल्कुल पॉइस जहरीली जो गैस है उससे भरी हुई थी.
Shri Prabhupada comments that even according to modern security standards,
शिला प्रभुपाद लिखते हैं आज के अगर हम जो सुरक्षा जितना हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
modern technology, that the fort was very well fortified even by modern high-tech security standards, you see.
आज के हम जो उच्च high-tech security का जो standards हैं, उसकी तुलना उसके के साथ भी तुलना करें तो उस समय जो भौमासुर का किला है बहुत अच्छे से guard था, बहुत अच्छे से उसकी
5,000 years or so. Don't even try to tell me it was primitive.
5,000 वर्ष पहले की बात है. तो कृपया मेरे को कभी ये मत बताइए कि उस समय लोग बहुत पिछड़े
थे. So the external material energy moves this wheel like electrical energy.
बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है.
Thus the wheel revolves very quickly around its hub or the central support.
इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार,
the supreme personality of Godhead,
अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है.
Who is the super soul and the ultimate truth.
जो परमात्मा तथा चरम सत्य है.
We offer our respectful obeisances unto him.
हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं.
Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The cycle of repeated birth and death is figuratively described herein as stated in the Bhagavad Gita.
यहां पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है.
अपरियमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विरिमे परम जीव भूतम महाबाहु ययिदम दयते जगत. The entire world is going on because the living entity who is a part and parcel of the Supreme Lord is utilizing the material energy.
सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूपी जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है.
Under the clutches of the material energy, the jivatma is revolving on the wheel of birth and death under the direction of the Supreme Personality of Godhead.
भौतिक शक्ति के पाश में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है.
The central point is the super soul, as explained in the Bhagavad Gita 1861.
इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है, जैसा कि भगवत गीता 1861 में कहा गया है.
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनस्य स्थिति ब्रह्मयां सर्वभूतानि यंत्रादानि मायायाम. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities, who are seated as on a machine made of the material energy.
Hey Arjun, Bhagwan sabke hriday mein sthit hain, aur un sare jeevon ki gati ka nirdeshan kar rahe hain, jo mano bhautik shakti se bina kisi yantra par aseen hain.
The material body of the living entity is a result of the conditioned soul's activities. And because the super supporter is a super soul is the true reality.
जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्य कलापों का परिणाम है और चूंकि इसको आश्रय देने वाले परमात्मा है अतएव परमात्मा ही वास्तविकता है.
Every one of us therefore should offer respectful obeisances to this central reality.
इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें.
One should not be misguided by the activities of this material world and forget the central point, the absolute truth.
मनुष्य को इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए.
That is the instruction given here by Lord Brahma.
यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Jitiname Namaste Sarvati Deve Gurubhani Charane Nivishesha Shunivare Vaskajade Sitarane Om Agnata Vrindasya Gina Gina Shalakaya Chakshuan Minidam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Maravishtam Stapatam Gena Bhutale Swayam Rupa Kala Mayam Dharati Swapadantiha Pandeham Sri Guru Sri Yuta Prakamala Sri Guru Vaishnavamsta Sri Rupa Sagrachata Sagnar Kunatam Tatam Stam Sajevam Sarvaitam Sagrutam Parijana Sahitam Trishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Harita Sri Vishakadam Chap हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते उमेश गोपिका कांत राधा कांत मोक्षसे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुति देवी ब्रह्मा विहरी रे पंचाकर्मत्रयोगेश कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तम नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं मथुरां मदीरे So there are many places in the Srimad Bhagavatam where these ingredients of material nature and how they are covering the living entity are functioning.
Srimad Bhagavatam mein kai aise sthan hai jahan par jo bhautik prakriti hai kis tatvon se bani hai aur wo kis prakar jeevatma ko dhake hue hai iska vandan hai.
This is beyond a metaphor, it's actually describing the situation of the jiva fallen into this material nature.
तो यहाँ पे इन उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया है कि किस प्रकार जो जीव है इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है गिर चुका है.
So Lord Brahma says, in the cycle of material activities, the material body resembles the wheel of a mental chariot.
यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है.
So his statement that it's a mental chariot is significant.
तो जो ब्रह्मा जी यहाँ पर मानसिक रथ का वर्णन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है.
Means that the whole material existence, more or less, is a mental concoction.
इसका अर्थ ये हुआ का पूरा भौतिक अस्तित्व एक तरह से कल्पना मानसिक कल्पना है.
It's a dream world that should not be taken as reality.
ये एक स्वप्न है जिसको एक वास्तविकता नहीं समझना चाहिए.
I've explained several times that in the morning walk in Los Angeles that Srila Prabhupada was discussing with his leading disciples Ridayananda Maharaj and others.
Maine kai baar iska varnan kiya hai ki kaise jab Srila Prabhupada ek baar subah ki sair jab kar rahe the Los Angeles mein aur apne jo varishth shishya hain udaharan ke Ridayananda Maharaj unse charcha kar rahe the.
Prabhupada was explaining there are so many hours of daydreaming and so many hours of night dreaming.
Itne sare ghante din ke swapna aur itne ghante raat ke swapna.
Here the ingredients of the daydream are described.
यहाँ पर दिन के स्वप्न का जो ingredients हैं उनका
वर्णन किया गया है. Eight ingredients of nature: earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, false ego. So these are the ingredients that are making up this dream world.
और यहाँ प्रकृति के आठ अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार.
In reality, the only substance is the Supreme Personality of Godhead.
Vastrikta.
Write it down. You don't know these things. Write it down. You bring a notebook not just to create weight on your lap, okay? Translate.
तो एक ही वास्तविकता है परम पुरुष परम भगवान.
So many hours of daydreaming, so many hours of night dreaming.
इतने स्वप्न दिन में और इतने घंटे स्वप्न रात में.
So the daydream is composed of earth, water, fire, air. These ingredients are given here in this verse.
तो जो दिन के स्वप्न हैं उसके अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो आठ अवयव का वर्णन है ये है.
Sky, mind, intelligence, false ego. So these are the ingredients of the dream that's composed of gross matter.
आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार. तो ये स्वप्न के ये इनसे स्वप्न बनता है दिन का भौतिक पदार्थ.
So then, what is real about it?
तो इनके बारे में क्या चीज वास्तविक है?
If it's a dream world.
अगर ये स्वप्न का संसार है, तो यहाँ पे सत्य क्या है?
We don't. So the word Maya is there. Maya means illusion, as you know.
Maya, Maya शब्द का अर्थ है भ्रम.
But our definition of Maya is not the same as the definition of the followers of Shankar. Write it down. You don't know these things.
हमारी जो माया की परिभाषा है वो शंकराचार्य जो परिभाषा जिस प्रकार से माया की परिभाषा करते हैं उससे भिन्न है.
We will agree with the Mayavadis or impersonalists that Maya means that which is not.
हम मायावादी से इन बात पर सहमत होंगे कि जो माया का अर्थ है जिसका जो वास्तविक नहीं है.
But please write down the key difference between the Mayavadi conception of Maya and the Vaishnava conception of Maya. It's very important you understand this point because the Sanskrit word is the same with the same meaning, only the purport, the deeper understanding, isn't there in the impersonalists.
तो जो मुख्य अंतर है जिस मायावादी जिस प्रकार से परिभाषित करते हैं माया शब्द को और जो वैष्णव जिस प्रकार से परिभाषा करते हैं, क्योंकि शब्द एक ही है परंतु उसका एक्सप्लेनेशन उसका तात्पर्य अलग है.
Because the Shankar conception is that nothing exists at all.
तो जो मायावादियों का जो परिभाषा है वो ये है
ब्रह्मान
ब्रह्मा ब्रह्मान.
So they say
के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता.
Material world doesn't exist at all, they say.
और वो कहते हैं कि जो भौतिक संसार है ये इसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है.
It's a total illusion. Total illusion means.
और ये पूर्ण रूप से भ्रम है.
It doesn't even exist. This is the position they take.
तो वो इस स्थान को ग्रहण करते हैं. वो कहते हैं कि भौतिक जगत ये इसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता.
Does that sound logical to you?
क्या ये आपको लॉजिकल लगता है?
You, Prabhu, yellow boy, not you, behind you, you. Does that sound logical?
Yes,
it sounds logical. So you have to listen with keen attention.
तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना है.
Is it logical what the Mayavadis are saying that the material world doesn't exist at all? It's a total and complete illusion. It doesn't even exist.
जो मायावादी कहते हैं कि भौतिक जगत इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूर्ण रूप से भ्रम है, ये आपको लॉजिकल लगता है?
Does that sound logical to you?
क्या आपको सुनने में ये लॉजिकल लगता है?
No. Okay. Let me see. Prabhupada says sometimes repetition is necessary.
Srila Prabhupada कहते हैं कई बार दोहराना आवश्यक है.
Well then what's the difference? Because we both agree on that Maya means illusion, then what is the difference, you say?
तो क्या अंतर है? हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि माया का अर्थ है भ्रम.
Because the definition is, this part of the definition is the same for the Vaishnavas and the followers of Shankar, that Maya means that which is not.
तो यहाँ तक हम जो वैष्णव की परिभाषा है मायावाद की परिभाषा है यहाँ पर हम सहमत हैं कि माया का अर्थ है जो नहीं
है. That which is not means an illusion.
जो नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ भ्रम है.
Like a mirage. I haven't seen it much in India, but in the West, there's also where I come, California, you know, sometimes it also gets extremely hot.
जैसे कि मिराज मैंने भारत में इतना नहीं देखा परंतु जहां से मैं कैलिफोर्निया में जब गर्मी का
ड्राइविंग इन अ डेजर्ट एरिया ऑन द हाईवे
और विशेष रूप से अगर आप हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो
एंड यू सी इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट लुक्स लाइक अ लेक
तो आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि एक तालाब है.
इट्स दिस इल्यूजन क्रिएटेड बाय हीट
तो ये भ्रम है जो गर्मी के द्वारा उत्पन्न हुआ है.
I've seen many times, I haven't seen it much in India, but maybe the roads are too bumpy in India.
मैंने कई बार देखा है परंतु भारत में इतना नहीं देखा. हो सकता है कि जो भारत में रोड है बहुत ही उबड़ खाबड़ है तो इस तरह ध्यान नहीं जाता.
That this mirage is called mirage means an illusion of water, you know.
तो मिराज इंग्लिश में कहते हैं मिराज.
Sometimes the poor animals see this illusion.
Marichika.
Sometimes in the desert, the poor animals see this illusion. It may happen on sand also, and they go open and get water because they're about to die from lack of water.
तो ये ऐसा भ्रम है जो किसी रेत पर भी हो सकता है, विशेष रूप से डेजर्ट का.
And they keep going, and there is no water. It keeps receding. It keeps going away.
और जो पशु होता है वो एक ऐसे से लगता है कि आगे ही जल है वो उसकी तरफ जाता है परंतु उसको लगता है फिर आगे जल है जिस तरह वो भागता रहता है बस इस भ्रम के कारण.
In this example we can say that's like we the Mayavadis and the Vaishnavas agree okay it's an illusion there wasn't any water there it was an illusion.
तो जब मायावादी और वैष्णव इस बात से सहमत है कि हाँ वहां पर पानी नहीं है ये भ्रम है.
The Mayavadis will say, "See, I told you, there was nothing there at all."
Mayavadi कहेगा, देखो मैंने तुम्हें कहा था, वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है.
But the Vaishnavas will say, "Yes, there was something there."
जब वैष्णव है वो कहेंगे, नहीं वहाँ पर कुछ था.
Call it mirage. Mirage. It's a French word, I think.
जिसको मरीचि का कहते हैं.
And it is a phenomenon. A phenomenon.
ये एक फिनोमिना है स्थित घटित है.
इट्स समथिंग
वो कुछ
है. इट एग्जिस्ट एज एन इल्यूजन. इट्स समथिंग. इट हैज सब्सटेंस एज एन इल्यूजन.
वो भ्रम की भांति प्रतीत होता है. उसके अंदर कुछ था परंतु वो भ्रम है परंतु कुछ तो था.
बट हियर इज द की. हियर इज द की.
परंतु यहां पर ये चाबी है.
द वैष्णव्स से that Maya means illusion, that's fine.
Vaishnavas कहते हैं कि माया का अर्थ है भ्रम. ये बात ठीक है.
It is a type of magic.
ये एक प्रकार का जादू है.
It exists as a phenomenon.
परंतु ये इसका अस्तित्व है एक किसी घटना के रूप में.
But here's the difference in definition. The Vaishnavas say, but it's not what it appears to be. That's what we add in the definition of Maya, that the Mayavadis are persons, they cannot do that. Write it down. It's very important to understand. Otherwise, the word is the same, and you will be lost in differentiating between the two definitions of Maya, because the Vaishnavas say, something exists, but it's not what it appears to be.
जब वैष्णव कहते हैं कि कुछ वहाँ पर घटित है, परंतु जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं है.
So we're given an example of, it's not my example, Prabhupada uses the same example of a mirage.
तो ये मेरा उदाहरण नहीं है. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे मारीचिका का.
It exists, but it's not what it appears to be. It appears to be water, but something is there. What is there? An illusion created by heat waves. That's something, isn't it? It's an illusion created by heat waves. That's something. That's not nothing.
तो वहाँ पर पानी प्रतीत होता है, परंतु वो वास्तव में पानी नहीं है। वो एक भ्रम है जो सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो यानी कुछ तो है वो। वो भ्रम है, भ्रम भी तो है।
This material nature, this dream world of this material world nature, composed of these elements that are listed here in the Bhagavatam.
जो भौतिक प्रकृति जो इन तत्वों से बनी हुई है, जहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है,
is illusion.
ये भ्रम है।
It's not the actual substance. But is there substance? The Vaishnav said, yes, there is substance.
ये वास्तविक पदार्थ नहीं है। तो वास्तविक पदार्थ होता है, वैष्णव कहते हैं हाँ वो है।
And all these detailed ingredients are listed here.
जितने डिटेल में दिए हुए हैं पदार्थ,
but it's not what it appears to be.
परंतु वो नहीं है जैसा प्रतीत होते हैं।
Then what is it?
तो ये क्या है?
What is the solution then?
तो ये भ्रम क्या है?
You know, I mean everybody has an experience, you know. If you're a space giant, you walk along, and there's a hole in the ground, you fall down, and you know, break your foot, and you feel the pain. You know, so something happens.
तो सबका अनुभव होगा अगर आप अपने विचारों में गुम हैं और आप चल रहे हैं आगे कोई गड्ढा है और वहाँ पे आप गिर जाते हैं आपको चोट लगती है आपको दर्द का अनुभव होता है
within this dream world.
इस स्वप्न के जगत में ही आपका जो अनुभव है
this is Prabhupada's example to when you're dreaming at night or dreaming daydreaming you fall asleep and something happens in your dream and you do not know that you are dreaming.
जब आपको नींद आ जाती है और आप कुछ स्वप्न देख रहे होते हैं और आपको नहीं पता कि आप स्वप्न देख रहे हैं
You recall the dream, you're inside the dream. The colors are vivid, you know the word vivid. The colors are vivid, the action certainly seems to be real. The setting, the stage set of the dream seems to be real. Your emotions that you feel in that dream seems to be real. It all seems to be very real.
जैसे आप रात में गहरी नींद में हो और सपना देख रहे हो और आपको नहीं पता कि आप सपना देख रहे हैं उसके अंदर जो रंग है बिल्कुल विभिन्न बिल्कुल स्पष्ट है जिस प्रकार का वहां नजरिया है वो बिल्कुल आपको असत्य प्रतीत होता है परंतु वो वास्तविक में वो वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है ये वैष्णव की परिभाषा है
सो इफ समथिंग एग्जिस्ट वैष्णव सेड नो इट्स नॉट अ टोटल इल्यूजन You say nothing exists, we say yes, something exists, an illusion exists, but what is that illusion composed of? Write this down. What is that illusion made out of?
तो
we say it exists, yes, but it is an illusion, yes, we agree, but what is it made out of?
तो जो वैष्णव है वो कहते हैं कि ये पूरा भ्रम ऐसा नहीं है कि किसी चीज का ही अस्तित्व नहीं है वहां पर भ्रम अस्तित्व कर रहा है परंतु ये भ्रम किस चीज का बना हुआ है इसको आप लिखिए
सो द वैष्णव डिक्लेयर दैट इट्स एन इल्यूजन दैट इज कंपोज्ड ऑफ कृष्णस एनर्जीज
जो वैष्णव है समझाते
एनर्जीज दैट सब्सटेंस
ये जो भ्रम है कृष्ण की शक्ति के द्वारा रचाया गया है उनके द्वारा बना हुआ है
दैट्स व्हाई द श्लोक इज सेइंग इन द साइकिल ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज The material body resembles the wheel of what? Of a mental chariot, not a real chariot, of a mental chariot.
जैसा कि श्लोक के अनुवाद में है, भौतिक कार्यों के चक्र में, भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिये जैसा होता है, मानसिक रथ.
But this verse describes all the details of the composition of that mental chariot. You see, it's all spelled out in this verse.
ये श्लोक जो मानसिक रथ है उसका वर्णन भी करता है विस्तृत रूप से
सो देन व्हाट इज द एक्चुअल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस मटेरियल इल्यूजन व्हाट इज द एक्चुअल एग्रीमेंट
तो जो ये भौतिक भ्रम है ये किस चीज का बना हुआ है वास्तविक में
कृष्णस एनर्जीज व्हिच आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा और लॉर्ड विष्णु
कृष्ण की शक्तियां जो वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है, ये भगवान
कृष्ण।
इसलिए हम कहते हैं, कृपया इसको लिखिए,
वासुदेव सर्वम इति,
वासुदेव सर्वम इति,
वासुदेव सर्वम इति। How many of you have heard this before? Vasudeva Sarvamiti.
आप में से कितनों ने पहले सुना है? Vasudeva Sarvamiti. ये कितने ने पहले सुना?
So you are our guests. They should read the Prabhupada's books also, because you can get that training from Prabhupada's books. Just like these yellow boys are very new to Krishna consciousness, but already they know this very important statement, Vasudeva Sarvamiti. That statement is all important.
जो ये statement है, जो ये वाक्य है, वासुदेव सर्वमिति, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Because it means that the ingredients of the illusion are composed of Krishna's illusory energy, his energy, not nothing, nothingness, his energy, something. But it's not what appears to be, just like the mirage in the desert. It's not what appears to be, but it is something.
तो जो ये भ्रम है, कृष्ण की भ्रमित करने वाली शक्ति जो है, उसके द्वारा ये बना हुआ है.
That something is Lord Vishnu's illusory energy.
तो वो क्या है? वो भगवान विष्णु की जो भ्रमित करने वाली शक्ति है, वो है.
So we are dreaming. Many times I've quoted Prabhupada's example.
हम सपने के अंदर हैं. मैंने कई बार श्रील प्रभुपाद का ये उदाहरण
tiger.
कोई बिस्तर पर सो रहा है और वो चिल्ला रहा है, शेर शेर.
Their feet are moving, although their body is asleep.
उसके
their feet are moving.
उसके जो पैर हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, चल रहे हैं.
And they are sweating.
उनका पसीना निकल रहा है.
And their arms are moving.
उसके हाथ हिल रहे हैं.
They're very frightened, and fear is on the physical face of the sleeping body. Fear is there.
और वो बहुत ही डरा हुआ है, और वो डर की झलक उसके चेहरे पर है.
And they're shouting, tiger, tiger.
और वो चिल्ला रहे हैं, शेर शेर.
Somebody save me, save me.
कोई मुझे बचाओ.
So a friend comes up.
तो एक मित्र आता है.
What is your name? So somebody comes and shakes you on the shoulder. Balikat, Balikat, get. Balikat, Balikat, come on. Jeev Jagrat, come on, wake up, wake up. Hey, hey, hey. You're just dreaming. There's no tiger. There's no tiger. Shakes you on the shoulder.
तो कोई आता है, कहता है, पुलकित प्रभु, जागो जागो, कोई वास्तव में शेर नहीं है.
So then you wake up.
तब आप जागते हैं.
You go, oh my God, that was terrible. The tiger was about to pounce on me. I was a dead man. Oh my God, I was going to be shredded and eaten by this fierce tiger. You saved me. And you're gasping for air because you physically were straining yourself, even though your body was asleep. You see?
तो जब हम निद्रा से जागते हैं, कहते हैं, हे मेरे भगवान, धन्यवाद, आपने बचा लिया. वो शेर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, मेरे को खाने ही वाला था.
Thank you so much for saving me.
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए.
Similarly, this is Prabhupada's example. I didn't make up this example. This is Prabhupada's example.
श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है.
So then, similarly, we are stuck in the dream world that is composed of these illusory ingredients.
उसी प्रकार से हम इस स्वप्न जगत में फंसे हुए हैं जो इन पदार्थों से बना हुआ है.
And we cannot wake up on our own. We believe in it. We believe in it.
और हम इसमें पूरा विश्वास रखते हैं, और खुद से हम इस स्वप्न से जाग नहीं सकते.
Almost everybody living in the city of Delhi believes that they are in Delhi.
विशेषकर दिल्ली में रहने वाले सभी लोग ये समझते हैं कि वो दिल्ली में रह रहे हैं.
Do you believe that you're in Delhi right now?
आप ये विश्वास रखते हैं कि आप दिल्ली में हो अभी?
You see, I won't ask for a show of hands because
मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि
I've done this before, and newcomers usually say yes.
मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा पहले भी अनुभव है जब मैं प्रश्न पूछता हूँ विशेष रूप से जो नए लोग आए होते हैं वो कहते हैं हाँ हम दिल्ली में
हैं
परंतु वास्तविकता ये है कि हम दिल्ली में नहीं है
right now, we are in Vrindavan, actually.
अभी हम वृंदावन में हैं
You say, oh, come on, Maharaj, give me a break, you know. Vrindavan is how many kilometers from here? Huh?
162.
Vrindavan is 160 kilometers here, you know. What are you talking? Some fancy talk? I mean, some flowery words? You're now we are in Vrindavan. What is this, you know?
तो महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं ये काव्य रूप से बड़ा अच्छा लगता है सुनने में परंतु जो वृंदावन है वो 160 किलोमीटर दूर है यहाँ पर
Say, okay, you can think like that if you like, but that's atheism.
तो कहेंगे कि महाराज हो सकता है कि आप ऐसा सोच सकते हैं परंतु
महाराज कह रहे हैं नास्तिकता बात है. It's not Vrindavan, it is atheism.
ये जो मंदिर है ये वृंदावन नहीं है ये जो धारणा है ये नास्तिकवाद है.
Where do Radha and Krishna live?
राधा और कृष्ण कहां पर रहते हैं
Do they live in Delhi?
क्या वो दिल्ली में रहते हैं?
How many of you think Radha Krishna live in Delhi?
आप में से कितनों को लगता है कि राधा कृष्ण दिल्ली में रहते हैं?
Ah, see, you're wising up. No, they don't live in Delhi. They live exclusively in Braj.
नहीं वो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं ब्रज में.
Exercise on Sankhya. Therefore, deduction. Therefore. Since Radhika and Raman are here, therefore this is Vrindavan.
क्योंकि राधा और अंतरमन यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए ये वृंदावन है.
Radha and Krishna won't go outside of, they will not go outside of Braj. They won't go outside. You won't find Radha and Krishna outside of Braj. Wherever they are is Braj.
तो जो राधा कृष्ण हैं, वो ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं. वो जहाँ पर भी उपस्थित हैं, वो वृंदावन है.
You won't even find Radha and Krishna in Mathura.
आप राधा कृष्ण को मथुरा में भी नहीं पाएंगे.
You won't find Radha and Krishna in Dwarka.
आप राधा कृष्ण को द्वारका में भी उपस्थित नहीं पाएंगे.
She wanted to get into the whole thing about how the, you know, residents, the queens of Dwarka, are expansions of gopis and so forth. Unless you want to get into all that, but that's, you know, deeper understanding. But otherwise. Radha and Krishna, Krishna doesn't even have a peacock feather in Dwarka.
तो जो भगवान कृष्ण हैं, वो मोर पंख भी धारण नहीं करते द्वारका में.
The paintings show Krishna, you know, with a peacock feather in Dwarka. Actually, not accurate. He does not wear peacock feather in Dwarka.
कई चित्र ऐसे होते हैं जो कृष्ण की द्वारका में उस लीला को प्रकट करते हैं, परंतु उसमें कृष्ण का मोर पंख दिखाते हैं. तो ठीक नहीं है.
They do not play on his flute in Dwarka.
भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी भी नहीं बजाते.
And when Krishna was agitated into deep braj and meditation, I started thinking about the gopis and braj.
जो गोपियां हैं ब्रज में इसके बारे में.
He started to shout, "Where's my flute? Where's my flute?"
तो जो भगवान कृष्ण हैं वो द्वारका में ध्यान लगा रहे थे गोपियों का जो वृंदावन में है और वो अचानक ये पूछते हैं कि मेरी जो वेणु है कहाँ है.
He started to enter into the mood of Braj.
तो वह ब्रज भाव में.
Another thing you need to know is that Prabhupada says, wherever there is Tulsi Devi is Vrindavan. Write it down, please.
और श्रीला प्रभुपाद ने ये कहा है कि जहां पर भी तुलसी देवी उपस्थित हैं वो वृंदावन है.
How many of you have Tulsi Devi at home?
आप में से कितनों के पास तुलसी है घर पे?
So almost everybody has Tulsi Devi at home, but I doubt that you ever thought about this.
तो मेरे को शायद संशय है कि आपने कभी इस प्रकार से सोचा होगा.
Your house is also Vrindavan, but you don't know it.
आपका घर भी वृंदावन है और आप ये जानते नहीं है.
So you develop that consciousness, that's all.
तो आप इस चेतना को विकसित कीजिए.
That with the whole, wherever the holy name is Braj.
जहां पर भी भगवान का दिव्य नाम है वो ब्रज है.
Wherever Tulsi Devi is Braj.
जहां तुलसी देवी प्रकट है वो ब्रज है.
So, in this way, even your home is Braj. You have to develop that consciousness.
इस प्रकार से जो आपका घर भी है वो वृंदावन है आपको ये चेतना विकसित करनी चाहिए.
Then we can get out of this dream world.
तब हम इस स्वप्न के संसार से बाहर जा सकते हैं.
The Guru and the Vaishnavas, they pull that fallen soul out of the dream world.
Guru or Vaishnava.
We can't get out on our own. There's no way. Na seva. We cannot get out on our own.
Usse swapne se jagate hain.
Okay, thank you very much.
Bahut bahut dhanyavaad.
Anybody have any questions?
Kisi ka koi prashna hai? To puch sakte hain.
Pass it quickly. Anybody has to go, you can go, no problem.
आप में से कोई जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं।
हरे कृष्ण महाराज, as you said, like Prabhupada gave an example of a lion in a dream, tiger.
Yeah. Complete your question.
अच्छा, so like in a dream we are following regulative principle in our day-to-day life, following sadhana bhakti, but in several time in dream we get illicit relation also in dream. So where do our consciousness stand at that time? Even though we are following in our this thing, but dream we have various type of dreams.
If I understood your question is just like you gave example of Prabhupada quoting the example of tiger. In the same way we are also following.
Yeah, our regulative principle in a dream.
So we are breaking a regulative principle in a dream. We are following sadhana bhakti in a dream, like.
No, not sadhana bhakti. We are breaking that regulative principle. We
in
are having
dream.
Some illicit
okay.
relation
okay, okay.
we may have in a dream.
Okay. So the
so
question.
Where do our consciousness?
What is the short version of the question, Prabhu? He was speaking English. Now you have to tell him he was speaking English, right? Now you have to ask the question in.
Prabhuji Prashna puch rahe hain ki jaise aapne share ka udharan diya, jo swapna, agar hum koi swapna mein koi jo niyam hai usko todte hain. तो उसका परिणाम क्या होता है या उसकी जो चेतना है वो कहाँ पे जाती है?
Excellent question.
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है.
Thank you very much.
बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए.
This question cannot be answered in 5 minutes, but I will attempt.
इस प्रश्न का उत्तर 5 मिनट में नहीं दिया जा सकता, फिर भी मैं प्रयास करूँगा.
It requires explaining.
कृपया शांति बनाए रखें, जो जा भी रहे हैं कृपया शांति बनाए रखें.
When you're dreaming, the soul is traveling in the subtle body.
जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो जो आपकी जीव आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर रही होती है।
This soul, the soul leaves the gross body and is traveling on the subtle plane. In the West, they call it the astral plane.
तो जो जीव आत्मा है, वो आपका स्थूल शरीर छोड़ देती है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक सूक्ष्म जगत में यात्रा कर रही है।
In the morning walk conversation, Venice Beach, California, this is being discussed by Srupa Damana Maharaj, Sridhananda, and the Srila Prabhupada about what is this dream state. So this is another part of discussion of what is this dream state.
तो जब कैलिफोर्निया में श्रीला प्रभुपाद सुबह की सैर पे स्वरूप दामोदर महाराज के साथ हृदयानंद महाराज के साथ इस बात की चर्चा कर रहे हैं।
Soul is traveling with a subtle body.
जो जीव आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर रही होती है।
It has a connection with the gross body.
परंतु उसका जो स्थूल शरीर है उससे संबंध होता है।
So whatever illusion takes place in a dream, if it's connected with your physical body or if it's connected with illusory, illicit sex or whatever. You just have to try to counteract it with pure Krishna consciousness as soon as you awaken. That's why we have a morning program, Mangal Arti.
तो जब आप कोई भी स्वप्न देख रहे हो, चाहे वो स्थूल शरीर से संबंधित हो या आप जैसे वर्णन कर रहे हैं कोई regulative principle उसमें कोई नियम तोड़ रहा हो, तो जैसे ही आप जागे आपको शुद्ध कृष्ण भावना अमृत से उसको overcome करना चाहिए, जैसे कि हम प्रतिदिन सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं।
There is a connection between the gross and subtle body when you're dreaming.
जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्थूल
आप
स्थूल और सूक्ष्म शरीर में संबंध होता है उस समय, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उस समय आपको कोई आप कर्म कर रहे हैं या आपको उसका फल मिल रहा है।
It's an illusion, you're not really acting on it.
तो ये वास्तव में भ्रम है जिसका आप वास्तविक में कार्य नहीं कर
रहे।
अगर आपने कोई स्वप्न देखा जैसे अवैध स्त्री संघ का, अगर आप जब तक उस पर वास्तविक रूप में कार्य नहीं करते तब तक आपको रिएक्शन नहीं लगता।
And one, I'll say, one disciple was having a problem forgive me if this sounds a little crude, but I'm just sharing this part of the answer to the question.
तो एक शिष्य को ये समस्या आ रही थी, तो मेरे को क्षमा कीजिए अगर ये उदाहरण आपको बहुत ही स्थूल रूप से या बिल्कुल ऐसा अटपटा लगे।
There was one male disciple was having a problem passing semen while he was sleeping.
तो एक पुरुष जो शिष्य है उसको ये समस्या आती थी जो
So he asked Prabhupada about it because he was in anxiety.
तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से इनका प्रश्न पूछा।
Prabhupada told him more or less not to worry about it.
Srila Prabhupada ne kaha kisi prakar ki chinta mat kijiye.
These things happen on the mental platform and
ye sukshma star par aisi cheeze hoti hain.
These things happen, but it's not the end of the world.
To ye jo sansar ka ant nahi hai.
Of course, there's a whole list of discussions of how to prevent such things by not eating at night, not drinking too much at night. That's a whole discussion.
तो ऐसी अलग-अलग चर्चाएं हैं कि किस रूप से ऐसी चीजों से बचा जा सकता है, जैसे रात में हम ज्यादा भारी चीज ना खाएं।
So we have to stop there. Thank you very much. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Granta Shima Bhagavatam ki jai. Shri Shri Jagadaswami Madhurai Sambhaji ki jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Radhikrishna ki jai.